ओम शांति। हम जो सभी बहने और भाई यहाँ उपस्थित हैं, केवल हम ही नहीं बल्कि जितने भी संसार के नर नारी हैं, बच्चे या बुजुर्ग हैं, किसी भी आयु भाग के कोई हों, किसी भी व्यवसाय के या वर्ग के कोई हों, समाज में हम रहते हैं और समाज से हमने बहुत लाभ लिया है। अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों से या पुरुषार्थ से ही हमारी सब आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। आज जो साधन हमें उपलब्ध हैं, जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, या जो हमारा विकास हुआ, या संक्षेप में ये कह दीजिए कि जो कुछ भी आज हम हैं, उसमें बहुत सी बातें समाज की हमें देन है। पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, दोनों प्रकार की। लेकिन हमने तो ये देखा है कि पशुओं को भी, गाय भैंस को भी लोग छेड़ने के लिए ले जाते हैं, उनके भी चरवाहे होते हैं, भेड़ों बकरियों को भी ले जाते हैं। कई दफा देखते हैं कि जो आवारा गौए हैं वो भी आपस में कॉन्फ्रेंस कर रही होती। रात को कभी आप किसी छोटे शहर में चले जाएं, कोई एक स्थान जैसा उनका निश्चित सा लगता है, पता नहीं सारा दिन घूम फिर के कोई कहीं से कुछ, कहीं से कचड़े के बारे में से अपना कुछ खा पी के लौट के फिर वहीं आके वापस बैठती हैं। बोल तो कुछ नहीं रही होती, लेकिन लगता है कि उनको ये तो कम से कम महसूस होता है कि हम इकट्ठे हैं, हम जिनस हैं, एक वर्ग के हैं। कुछ ऐसा उनसे आभास सा होता है कि क्या कारण है ये डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, मंथ आफ्टर मंथ, दे कम एट द सेम प्लेस, एक जगह पर आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी वैक्यूम में नहीं रह सकता, कोई खला में नहीं रह सकता, अकेले में नहीं रह सकता। तो हमने देखा है कि जो सन्यासी लोग हैं, जो जंगल में जाके रहते रहे कुटिया बनाकर, वहां अपने अभ्यास करने के लिए, प्रभु अनुभूति या ईश्वर प्राप्ति जिसको भी कोई लक्ष्य वो कह दें, उसके लिए जहां वो समझते थे कि संसार की हलचल से, उसके हसल बसल से थोड़ा अलग रहना चाहिए, उन्होंने भी चतुर्मास बनाया हुआ था, शहर में 4 महीने जाकर रहना, लोगों के सामने प्रवचन करना, उनको व्याख्यान करना, फिर भी इंसान की शक्ल देखने वो भी आते थे वहां के एकांत शांत को छोड़कर, समाज को लाभ देने के लिए। तो मेरे कहने का भाव ये था कि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज से हमने काफी उपलब्धियां की, हमें प्राप्तियां हुई हैं, तो हम में से हर एक पर ऋण है समाज का एक प्रकार से। तो उस बात को जैसे कई लोग बड़े कहा करते थे कि मनुष्य पर मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, आचार्य ऋण इत्यादि होते हैं। मनुष्य को हर एक ने योगदान दिया है अपने अपने प्रकार से आगे बढ़ाने में, और हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, थैंकलेस नहीं होना चाहिए कि इनके प्रति जिन्होंने हमारी सेवा की, हमें यहां तक लाया। ऐसे ही जो कुल समाज है सारा, हम ये देखते हैं, इसे हमें मानना पड़ता है कि उस समाज पर भी हमारे एहसान है। और यहां तक ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके भी हमारे पर एहसान है। जैसे आमतौर से जब हम छोटे थे, कायदे में एक छोटी किताब में हमने पढ़ा था, एक बुजुर्ग आदमी आम के पेड़ लगा रहा था, काफी बड़ा था, शायद 80 साल का होगा, उसकी लिखत से तो ऐसे ही मालूम होता था कि काफी बुजुर्ग था। जो सवाल किया गया उससे, उसे लगता था कि वो व्यक्ति काफी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था। तो एक छोटा बच्चा जा रहा था, बोला, दादाजी ये आप आम के पेड़ किसके लिए लगा रहे हो, आप तो बुजुर्ग हो गए हो। उसको ये ख्याल नहीं आया बड़ों से ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने स्पष्ट बात कह दी जो मन में थी। कहता है, ये आम के पेड़ किस लिए लगा रहे हो, ये तो आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, इसको तो उगने में, बड़ा होने में, पेड़ को आम आने में टाइम लगेगा, आप किसके लिए लगा रहे हो। उसने कहा, बेटा बुजुर्गों ने लगाए थे, हमने खाए, हम लगाएंगे, तुम्हारे जैसे बच्चे या और आने वाली पीढ़ियां इसको खाएंगी, ये चलता है। तो आज उस चीज को ही अगर हम ले लें, हमारे बुजुर्गों ने भी अगर हमारे लिए कुछ किया, वो भी हमारे ऊपर एहसान है। तो मनुष्य में जहां और उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, जहां और सद्गुण उसमें आने चाहिए, आध्यात्मिकता जो एक बहुत व्यापक जानकारी है, अभ्यास की एक बात है, वहां ये भी एक मनुष्य के मन में एक भावना पैदा होनी चाहिए कि मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए ना जीऊं। अपने लिए जिया तो क्या फायदा हुआ, 99% आप देखेंगे लोग अपने लिए ही सारा कुछ करके खत्म कर देते हैं, या अपने परिवार के उससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो उन दो चार पांच का जो छोटा सा परिवार है सोचेंगे ये हमारा बच्चा है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बनानी है, ये लड़की है, इसकी शादी होने वाली है, इसके लिए कुछ खर्च करना है, एक हद तक के ख्याल रहते हैं। और वो भी कोई सेवा भाव नहीं होता, वो तो समझते हैं हमारा फर्ज है, ये हमारी फैमिली मेंबर्स हैं और हमारी एक ड्यूटी है। जो छोटे थोड़े से उनके फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं वहां तक ही उनकी बुद्धि सीमित रहती है। लेकिन जिस समाज का अन्न जल हमने खाया है, पानी पिया है इस पृथ्वी का, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी भी सेवा करें। हमारे और लोगों ने कुछ किया तो हमें लाभ हुआ, हमारा भी ये कर्तव्य है। और मनुष्य के जीवन की ये सफलता है कि उसकी जो देह है, उसका जो अपने सारी कई किसी भी प्रकार के उसके पास टाइम है, मनी है, एनर्जी है, वो सारी अपने लिए ही उसकी ना लग जाए, वो दूसरों की भी कुछ सेवा कर पाए, ये भी एक आवश्यक चीज है। तो उस बात को हम लेकर देखते हैं कि बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं बनी हुई हैं, बहुत से जो हैं वो इस प्रकार की कोई किसी तरह की कोई किसी तरह से सेवा कर भी रहा है। तो कई लोगों में ऐसे जज्बात, ऐसी भावनाएं, ऐसे ख्याल हैं भी सही जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि इतनी समाज सेवी संस्थाओं होने के बावजूद, इतने समाज सेवी व्यक्ति होने के बावजूद, हजारों लाखों की संख्या में होंगे, बहुत से भाई बहनों से जब आप मिलेंगे, उनका परिचय सुनेंगे, तो बताएंगे कि हम सोशल वर्क करते हैं, तो देखकर उनसे मिलकर खुशी होती है कि ये व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि समाज की भी कोई सेवा करता है। ये एक ऐसा वर्ग है जो कुछ त्याग करके, मेहनत करके ये भावना रखता है। अब उसमें से भी सब तरह के लोग तो होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनमें से जेन्युइन नहीं होते, जेन्युइन भी होते हैं, तो करते हैं। लेकिन ध्यान में आपका इस ओर खिंचवाना चाहता था कि इतना सब होने के बावजूद भी जो हमारी समस्याएं हैं, जिनको लेकर कोई संस्था बनती है, क्या वो समस्याएं हमारे समाज से निर्मूल हो गई, क्या वो इरेडिकेट हो गई, इलिमिनेट हो गई, समाप्त हो गई? मान लीजिए कोई लोग समझते हैं कि हम गरीबों की सेवा करें, गरीबी को मिटाएं, तो हम तो रोज अखबार में जो आंकड़े पढ़ते हैं, फिगर्स टाइम टू टाइम जो पब्लिश होती हैं, तो यही आता है कि इंडिया में और देशों की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, और भी बहुत से देश जो इससे भी ज्यादा खराब हालत में है, लेकिन भारत भी बहुत नीचे के लोगों में से, शहरों कंट्रीज में से माना जाता है, जो बॉटम मोस्ट, लोअर मोस्ट पांच छह हैं उनमें से, तो 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा जो यहाँ के लोग हैं वो निर्धनता की रेखा के नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं। गांव में चले जाएं, मुझे याद है महात्मा गांधी की जीवन कहानी में आता है कि वो एक नगर, एक गांव में गए थे, लोगों ने वहां उनको आमंत्रित किया था, और उनको ये हमेशा रहता था कि वो अपने भारतवासियों से मिलें, वहां की परिस्थिति को देखें। तो इस बात को लेकर वो एक गांव में गए, और वहां पर जो उन्होंने देखा कि जो कपड़े थे एक अध्यापिका के, एक छोटा सा स्कूल था, वृक्ष के नीचे बैठ के वो अध्यापिका छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी, उसके जो वस्त्र थे वो तो पूरे वस्त्र नहीं थे, और जितने थे भी थे सही वो बहुत मैले कुचैले थे। तो जब वो वहां से फारिग हो गए विजिट करने के बाद, तो लोगों ने कहा कि आपके क्या विचार हैं, कैसा लगा आपको, कैसा काम हो रहा है, इसके विषय में आप कोई सुझाव दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि और तो सब ठीक है, लेकिन कपड़े इनके बहुत मैले कुचैले थे। तो उन्होंने कहा, जो उस व्यवस्थापक थे उस पाठशाला के, उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो आपने स्कूल देखा है, थोड़ा उनकी कुटिया, उनका घर, उनका निवास भी आप देख लें। तो वो उनके निवास स्थान पर जहां वो औरत रहती थी वहां उसको ले गए। तो उन्होंने देखा कि उस घर में तो सब लोगों ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। तो उन्होंने उसको बताया कि इस गांव की ये हालत है कि एक ही धोती है, पुरुष बाहर जाता है तो वो पहन के जाता है, नारी जाती है तो वो पहन के जाती है, तो बताइए धोएं कब उसको और साफ कब करें, ये उनके लिखा हुआ मिलता है, मैंने पढ़ा था एक दफा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, हमारे देश की ऐसी हालत है, इतने निर्धन हो चुके हैं हम, दूसरों ने गुलाम करके हमारी ये हालत कर दी है कि हम लोग ही अपने इस देश के मालिक हैं, और यहाँ के रहने वालों की इतनी बुरी हालत है कि उसके लिए कुछ होता नहीं। तो जिन लोगों ने ये इस सेवा में, देश को आजाद कराने में लगाया, जब उन्होंने देखा लोग कितने दुखी हैं, तभी तो उनके मन में ये पीड़ा उत्पन्न हुई कि हमें कुछ करना चाहिए, और उन्होंने और काम छोड़ के इस काम में लग गए। कितने लोग हैं जिनके बच्चों को कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, रहने का कोई ठीक स्थान नहीं, कोई घर में बीमार हो जाए तो उसके लिए इलाज के पैसे नहीं, आजकल इतने कीमती हो गया है, इलाज दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है। किसी भी आप जनरल हॉस्पिटल में जाके देख लें, लोग इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं विंडोज के सामने जहां दवाई मिलती है और डॉक्टर को दिखाने के लिए, और इतने मरीज होते हैं कि डॉक्टर के पास टाइम ही कहाँ है, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख देता है नुस्खे के ऊपर, उसकी सारी बात सुने, वो कहने की कुछ कोशिश करता है, वो कहता है हाँ ठीक है मैंने समझ लिया आपकी बात। क्या समझ लिया बेचारे ने, पूरा तो कुछ कहा ही नहीं, पहले से कैसे समझ लिया आप कोई ज्योतिषी हैं या लाल बुझक्कड़ हैं या किसी के मन में आप झांकने वाले व्यक्ति हैं। आपने ऐसे ही समझ लिया तो उसको घर से आने की जरूरत नहीं थी, घर दवाई भिजवा देते, वहां ही समझ लिया था आपने। दे डोंट हैव द टाइम टू हियर द पेशेंट, सुन भी नहीं सकते, इतना समय भी नहीं, इतने पेशेंट बढ़ते जाते हैं, नित्य नए अस्पताल खुलते हैं, मरीज भी बढ़ जाते हैं, मर्ज बढ़ता गया, जू जू के दवा की वही वाला किस्सा है, आप ये देख लें। तो मैं आपका ध्यान इस ओर खिंचवाता हूं कि कोई ऐसा साधन है जिससे हम संसार से दुख और अशांति समाप्त करें। गरीबी तो उनमें से एक समस्या है। एक बात मैंने आपको कही, ऐसी बुरी हालत है, आप कलकत्ते में चले जाएं, कई दफा ऐसे किस्से छपते हैं कि जब शादी हुई कहीं पर और लोगों ने वो जो पतले हैं जिन पत्तों पर खाना खिलाया और अपनी बारात को, वो पत्ते जब फेंके गए, किसी ने पूरा खाया, किसी ने अधूरा खाया, किसी के पत्तल को कुछ लगा रहा, पत्ते वो जो फेंके उन्होंने, एक तरफ से कुत्ते छीना झपटी कर रहे हैं, एक तरफ से इंसान छीना झपटी कर रहे हैं। कुत्तों और इंसानों में आपस में लड़ाई हो रही है कि इसमें से बचा कुचा ही हमें कुछ मिल जाए। तो कैसी हालत है संसार की, रोगियों की अलग, निर्धनों की अलग, और भी कितनी समस्याएं हैं। तो संस्थाएं भी बनती जाएं, समाज सेवक भी बढ़ते जाएं और उसका कोई हल भी ना हो, तो क्या कोई ऐसा तरीका, ऐसी विधि है जिससे कि ये संसार सुखमय बने। आप देखेंगे बहुत सी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं या आध्यात्मवाद के बहुत जो सिद्धांत हैं, कई लोगों के जो अपने अपने दर्शन हैं, जीवन दर्शन या वैसे ही जो अध्यात्म दर्शन, फिलॉसफी, वर्ल्ड व्यू जो उनका है, उसमें तो उन्होंने ये कह दिया कि ये संसार दुखों का घर है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, उसका पहला जो विचार है वो जो वहां आमतौर से बताया जाता है उसके दर्शन में, कि ये संसार दुखों का घर है। बहुतों ने कहा, नानक जी ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, इत्यादि इत्यादि, हर एक ने ये कहा कि ये संसार बड़े दुखों का घर है। एक दुख से मनुष्य निकलता है, दूसरा दुख आता है। अच्छा, तो इस दुख से छूटने का उपाय हर एक ने बताने की कोशिश की कि मुक्ति आपको कैसे प्राप्त हो। आप प्रभु सिमरण करें, किसी ने कह दिया कि सब छोड़ छाड़ के, त्याग करके, संन्यास करके ईश्वर की शरण जाएं, किसी ने कुछ संसार को छोड़ने के लिए कहा। लेकिन ये जो दुखों का घर है, ये सुखों का घर भी बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसको बनाने में आप क्या करो, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। भाई अगर ये दुखों का घर बना है तो हमारे ही कर्मों से बना है, अगर हम अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर दें तो ये सुखों का घर बन जाएगा। तो अगर कोई घर में पांच व्यक्ति हैं, सदस्य हैं एक फैमिली के, उनमें से हर कोई दूसरे से झगड़ा करता है, एक दूसरे की मानता नहीं है, प्रेम से सद्व्यवहार से आपस में रहते नहीं, सास बहू के झगड़े हम सुनते हैं, यहां तक के ब्राइड बर्निंग के केसेस, ये डॉरी केसेस आमतौर से सुनने को मिलते हैं, ये क्या है? आपस में इंसान थोड़े से एक परिवार के सदस्य नहीं रह सकते शांतिपूर्वक, और वो कहता है इससे तो मैं मर जाऊं अच्छा है, वो कहती है मैं इससे मर जाऊं अच्छा है, वो कहता है ये घर क्या बना रखा है, नर्क बना रहा है, मैं तो यहां से जा रहा हूं, वो कहता है मैं भी जा रहा हूं, तो बनाया किसके लिए घर? और सभी कहेंगे हमने तो आप समझा ये संसार दुखों का घर है, ये गृहस्थ जो है ये तो जंजाल है, ये तो दलदल है, इत्यादि इत्यादि हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं। अरे भाई अगर ऐसा है तो ये बनाया किसने? ये हम लोगों के कर्मों ने, हमारे लोगों के संस्कारों ने, स्वभाव ने, हमारे अपने ही, उसको ठीक करो तो यही सुखमय बन जाए। अगर आप सबसे प्रेम भाव से व्यवहार करो, सेवा करो एक दूसरे की, और सहनशीलता का गुण लाओ, अगर कोई एक बात कहता है चलो कोई बात नहीं सुन लो, अंदर से आवाज उसको खुद आएगी कि ये व्यक्ति तो चुप कर गया, इसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरी गलती है, मैंने कटु वचन बोले इसको, ऐसा तो कोई भी नहीं, इतना कठोर तो कोई नहीं। वो कहते हैं सबसे दुनिया में नरम चीज है तो वो भी मन है, और सबसे कठोर चीज है तो वो भी मन है, स्टील से भी ज्यादा कठोर जो है, जिसने स्टील को भी बनाया है, वो मन है मनुष्य का, और नरम से नरम आमतौर से पुराने जमाने की भाषा में तो मोम को कहा जाता है जो पिघल जाती है, लेकिन आज के जमाने में विज्ञान में तो उससे भी नरम चीजें हैं, प्लास्टिक की, फोम की, कई ऐसी चीजें मिलती हैं, बन गई हैं जो उससे भी ज्यादा नरम है, इसलिए लोगों ने फोम के गदेले बना रखे हैं, तो कई नरम चीजें उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन उन सबसे नरम मन है। किसी ने एक रिसर्च की ये जानने की कि दुनिया में कड़वी से कड़वी चीज क्या है, सबसे ज्यादा द मोस्ट बिटर, सबसे ज्यादा कड़वी चीज क्या है। बेचारे ने काफी टाइम उसी खोज में लगा दिया और आखिर में जब घर आया, दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, खूब झाड़ा उसको, खूब डांटा कि तू रिसर्च करता फिरता है, घर की तुझे परवाह नहीं, बेटे क्या है, तू क्यों आया है, क्या मतलब था तेरे आने का। खूब उसको, वो बेचारा तो सोच रहा था मैं पीएचडी लूंगा, रिसर्च कर रहा था, इस पर एक किताब लिखूंगा कि दुनिया की नॉलेज में एडिशन करूंगा कि सबसे कड़वी चीज क्या है, कुछ और खोज के लाया था। लेकिन जब नारी ने उसके ऊपर अपनी बौछार बोछाई तो उसने कहा कि सबसे बिटर चीज ये है। मैं तो कुछ और सोच के लाया था, मेरा सारा थीसिस बदल गया, जो सारा वो रिसर्च करके लाया था उसको रिवाइज करनी पड़ी। कहता है कि आप धन्यवाद आपका, जो मेरी रिसर्च अब पूरी हुई। उसको वाइफ को कहता है कि आपका ये मेरे लिए स्वागत ही समझ लो, क्योंकि मेरा थीसिस जो है मैं वो सारा लिखूंगा, लिखने के बाद अंत में ये जरूर लिखूंगा कि मनुष्य की जो कटु वाणी है उससे ज्यादा और कड़वी चीज दुनिया में कोई नहीं। किसी ने कहा कि भाई संख्या, या किसी ने कहा कि वो जो कई चीजें है ना, जो पोटेशियम साइनाइड है, लोग जो सुइसाइड करते हैं, साइंस में जब हम पढ़ते थे केमिस्ट्री वगैरह तो कहते उसमें लिखा होता था कि पोटेशियम साइनाइड का आज तक टेस्ट कोई नहीं बता सका, क्योंकि जैसे ही आपने जबान में लगाया वो आदमी ढेर हो जाता है, बता ही नहीं सकता है, वो ऐसी जहर है। अनुमान है लोगों का कि कड़वी होगी, किसी ने अनुभव से नहीं बताया, अनुभव से बताया ही नहीं जा सकता, किसको पड़ी है कि अपनी जान खोए उसका टेस्ट जानने में, जब जान ही नहीं सके लोग। लेकिन उसने वो रिसर्च की और कहता है कि सबसे जो कटु चीज है, ऐसे ही आपको मालूम है लोगों ने कहा हुआ है कि जो सबसे तेज तलवार है, सबसे तेज तीर जो है, सबसे बड़ा बम जो है, वो मनुष्य के वचन है। ये पत्थर से भी ज्यादा चोट करते हैं मनुष्य को। कहा है कि भाई जबान के घाव नहीं भर सकते, तलवार के घाव तो भर जाते हैं, फिर भी भर जाते हैं। कई वर्षों तक लोग मिलते हैं उसको, कहते हैं भाई आप नमस्ते क्यों नहीं करते, आप उसे मिलते क्यों नहीं, कहता जी छोड़ो जी छोड़ो इसको, ये ऐसी टाइप का आदमी है, हमने इसको फलां मौके पर मदद की, फलां मौके पर मदद की, फलां मौके पर मदद की, और फिर जब हम इसके पास गए तो इसने ऐसा हमसे वचन बोला, कटु वचन बोला। वो कहते हैं ना, गुड़ ना दो तो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। वो गया था एक दुकान पर, कोई व्यक्ति बाबूजी बिजनेस मैन को बोला कि मेरे पास रोटी तो है लेकिन खाऊं किससे, अरे थोड़ा सा गुड़ दे दो, शक्कर दे दो, चीनी मत दो, चलो ये सेकंड ग्रेड चीज ही दे दो, इससे मैं थोड़ा रोटी खा लूं। उसने सोटी उठाई हुई थी, अब तो जो दुकानें हैं परचूनी की वो बड़े डब्बों में, शीशे वाले डब्बों में बड़ी बना के रखी होती है, हमारे जमाने में तो कट्टे जो होते थे बोरी के टुकड़े, उनमें गुड़, किसी में चीनी, किसी में कुछ रखा रहता था, मक्खियां आती थी तो लोगों ने एक छड़ी या कोई एक छड़ी के साथ कपड़ा बांध के रखा होता था जो उड़ाते रहते थे। वो पड़ी थी उसके पास, उसको लेके कहता है जाता है कि नहीं तो मैं ये मारूंगा, तू मांगता है, भाग भाग यहां से, मेरा टाइम खराब मत कर। तो उसने कहा महाराज गुड़ नहीं देते तो मत दो, लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, उस पर तो पैसा कोई नहीं लगता, ये तो बिना पैसे के बोल सकते हो। तो वो चीज नहीं है जो हमारे भाषा में, हमारी जबान में, हमारे व्यवहार में आना चाहिए। उसकी वजह से लोग क्या कहते हैं, ये संसार दुखमय है, ये संसार दुखमय है, ये नर्क बन गया है। तो ये नहीं सोचते कि ये जो हमें जबान मिली है इससे हम प्रेम के वचन भी बोल के किसी की सेवा कर सकते हैं, इससे हम कटु वचन बोल के किसी के दिल को दुखा भी सकते हैं। नर्क ये बना है, दुखमय बना है, तो हमारे ही कर्मों से बना है, हमें इसको ठीक करना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो शिक्षा के निमित्त माध्यम है, उन्होंने हमें ये सिखाया कि बच्चे केवल ऐसा नहीं, तुम अपनी ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का साधन करो। ये तो स्वार्थ एक और प्रकार का स्वार्थ हो गया, जैसे संसार में अनेक प्रकार के स्वार्थ हैं, ये एक आध्यात्मिक स्वार्थ हो गया। चलो अच्छे ग्रेड का स्वार्थ सही, उनसे समझो रॉयल क्वालिटी का एक स्वार्थ सही, सब लोग दुख और अशांति से मुक्त हो। माना ये संसार ही दुखमय न रहे, ये संसार ही सुखमय बन जाए, शांतिमय बन जाए, ऐसी सेवा करो। केवल अपने लिए ही सुखी संसार मत बनाओ। आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, एक बिल्डिंग बना ली, कार भी रख ली, चार पांच नौकर भी रख लिए, और अपना साधन जुटा के आप जहां जाते हैं लोग सलाम टेकते हैं और आपको जगह जगह बुला के फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, आप संतुष्ट हैं, बहुत खुश हो गए, जीवन हमारा सफल हो गया। बट दैट इज नॉट एनफ। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल यू हैव मेड हैप्पी इन योर लाइफ। कितने रोतों के आंसू आपने पूछे हैं, कितने लोगों को सुख दिया है, कितने लोगों को शांति आपने जीवन में दी है, आपके जीवन की सफलता इसी में है। किसी ने कहा है कि कोई जो मनुष्य का जीवन है वो कहते हैं जी वो फलां व्यक्ति जो है 80 साल की उम्र में उसने शरीर छोड़ा, काफी बड़ी आयु प्राप्त की। और आपको मालूम है जब बहुत बड़ी आयु के लोग होकर मिलते हैं, मरते हैं लोग, तो उनका जो अर्थी निकाली जाती है वो विशेष सजी हुई होती है बुजुर्गों की, जो काफी उम्र तक जी लें, दादा या दादा के भी पिता महा, जो उनकी अर्थी निकलती है वो सज धज के निकलती है। पैसे भी लोग वो पुरानी प्रथा है डालते हैं, बाजे बजते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं। बच्चे लोग तो समझते हैं आज उत्सव है, उनको क्या मालूम कि परदादा जी जो हैं वो प्राण त्याग गए, तो वो अपना खुश होते हैं कि आज लड्डू खाने को मिले। तो ऐसा होता है, तो वो भाई काफी आयु जी, लेकिन सवाल ये नहीं कोई पूछता कि वो अपने लिए जिया या किसी और को भी सुख दिया। संसार में जीना उसका अच्छा है जो केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। हमने संसार में अपना तन मन धन स्वयं ही सारा अपना खत्म कर दिया, तो या दूसरों को भी उससे कुछ लाभ दिया, ये एक सोचने की बात है। तो किसी व्यक्ति ने कहा है, आवर लाइफ शुड बी मेजर्ड नॉट इन ईयर्स बट इन ग्रेट एक्ट्स। हमने जीवन में महान कार्य क्या किए उससे हमारे जीवन को मापा जाना चाहिए। किसी ने 50 काम किए, किसी ने 100 काम किए, उसकी आयु उतनी ही बड़ी है। वरना कर्म तो हम कर ही रहे हैं, अगर हम कर्म मोह से, क्रोध से, लोभ से, इस तरह से काम कर रहे हैं, विकारों के वशीभूत हुए हुए, फिर तो और ही अपना आगे के लिए नुकसान कर रहे हैं। कर्म के बिना तो कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। गीता में ये कहा गया है कि हे वत्स, हर एक व्यक्ति जो इस कर्म क्षेत्र पर आया है, जिसने ये कर्मेंद्रियों का शरीर लिया है, कर्म तो हर एक को करने पड़ते हैं, बिना कर्म किए कोई नहीं रहता। खाना खाना ये भी एक कर्म है, इस तरह से मन से कुछ सोचना ये एक मानसिक कर्म है। मन वचन कर्म से कर्म के कई प्रकार हो सकते हैं। कर्म तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन यहां तक भगवान ने कह दिया कि कर्म करने तो मुझे भी संसार में आना पड़ता है, ताकि अगर मैं ना आऊं तो इस संसार में अव्यवस्था आ जाती है और लोग धर्म से हटकर अधर्म में पड़ जाते हैं, पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है संसार में। कर्म मैं भी करता हूं, लेकिन जो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसको नहीं जान के कर्म करता रहता है तो पाप का भागी बनता है। तो कर्म तो हम करते हैं, लेकिन उसमें से कितने कार्य हमारे कर्म हैं जो हम सेवा के लिए करते हैं, या जो हमारे सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, सतोगुणी कर्म है, महान कर्म है, जो हम कहें जिसके लिए, जैसे वो कबीर कहता है, मेरी चुनरी में लागा दाग, पिया के घर जाऊं कैसे। तो ये तो सारा मेरा, जैसे सजनी जाती है साजन के पास, शीशे के सामने खड़ी होगी, सुरमा पहनेगी, पाउडर लगाएगी, कंघी देगी, तैयार करेगी, साजन के पास जाना है। एक जाता है व्यक्ति इंटरव्यू पर, तो कहता है पर्सनैलिटी भी देखेंगे मेरी, सिर्फ मेरी जनरल नॉलेज नहीं देखेंगे। बार बार कंघी करेगा, बाल ये इधर से उधर बिखरा हुआ है, तो फिर थोड़ा उसको पानी लगा के सेट करेगा, इट शुड बी ऑल राइट। देखेगा नेकटाई ठीक जगह पर है कि नहीं है, यहाँ जेब में रुमाल ठीक रखा है कि नहीं, पेन ठीक जगह पर लगा हुआ कि नहीं लगा, कि पर्सनैलिटी को भी लोग देखेंगे। तो वो हर एक व्यक्ति ये देखने की कोशिश करता है कि मेरा जो व्यक्तित्व हो वो ठीक प्रकार का एक व्यक्तित्व हो। लेकिन ये तो एक हमारा बाह्य अपना मूल्यांकन है, बाह्य व्यक्तित्व है। हमारा मन, हमारे कर्म, जो पर्सनैलिटी विशेष है, वास्तविक है, वो हमारी कहां तक ठीक है, इसको हमने अपने जीवन में इसका मूल्यांकन किया या नहीं किया, इस तरफ हमने ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो आप ये देखेंगे कि ऐसी सेवा की आप संसार में जरूरत है जिससे कि संसार में शांति हो, सुख हो, ये समस्याएं समाप्त हो। अब अनेक प्रकार के, मैंने जैसे आपको बताया, सेवा संस्थाएं हैं, अनेक प्रकार के कार्य भी होते रहते हैं, लेकिन वो समस्याएं तो बढ़ती रहती हैं। उसके लिए जरूरत किस बात की है? अगर आप विश्लेषण करें, ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि सभी समस्याओं का मूल एक ही है, और जब तक आप उस मूल को नहीं समाप्त करेंगे, उसके काज को, उसके, किसी ने कहा ना भाई, बिना कारण जाने उसका निवारण नहीं हो सकता। जब तक बीमारी जानी नहीं, उसकी दवाई कैसे देंगे? और दवाइयां देते रहेंगे तो उसकी और भी रिएक्शन हो जाएंगी। तो हमें तो जरूरत है कि उसके मूल कारण को जाने। अब मान लो लड़ाई है, एटम और हाइड्रोजन बम बना रहे, रूस वाले भी, अमेरिका वाले भी, चाइना वाले भी, फ्रांस वाले भी, इंग्लैंड वाले भी, उसको न्यूक्लियर क्लब कहते हैं कि भाई कुछ देश ऐसे हैं जो कि एटम और हाइड्रोजन बम बनाते हैं, उनके पास ये विज्ञान, ये कला आ गई है कि इस प्रकार के विस्फोटक शस्त्र बनाएं जिससे काफी बड़ा विध्वंस हो। अब लोग चाहते हैं कि वो समाप्त हो जाए, चलो वो समाप्त भी कर दें, जैसे थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं, लेकिन करने के बाद सोचने की जरूरत यह है कि उन्होंने बनाए क्यों थे, उसके बनाने में उनका मूल भाव क्या था। एक तो उनको डर था कि फलां देश हम पर अगर आक्रमण कर देगा हम गुलाम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, उसका एक मूल तो भय था, दूसरा क्या था, आपस में ईर्ष्या या घृणा थी। वो समझते थे ये बड़े शस्त्र ले रहा है, मेरे पास भी होने चाहिए, मैं भी विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति हूं, उसके साथ उसका एक कंपटीशन था। और उनका सिस्टम कम्युनिस्ट सिस्टम था, उनका सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम था, वो पूंजीपति देश था, पूंजीवादी, और वो साम्यवादी, तो वो भी एक प्रकार से नफरत या द्वेष था। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस सारी परिस्थिति का विश्लेषण करें कि अगर वो ईर्ष्या द्वेष और ये घृणा और ये हिंसा की भावना, प्रतिशोध की भावना उससे जो पैदा होती है, ये चीजें अगर ना होती तो ये सारा अरबों रुपया जो खर्च हुआ ये क्यों होता, इतने सारे जो अच्छे शरीर वाले लोग हैं वो क्यों लगे होते उसमें लड़ाई के काम में, उसकी बजाय वो खेती करते, कुछ चीज बनाते, संसार का भला होता, वो पैसा गरीबों के काम आता तो कुछ उसका उपकार होता, लेकिन वो सारा उनको बनाने में लग गया। तो आप सोचिए कि जब तक इनको हम नहीं निकालेंगे, और ये मनुष्य के मन में विज्ञान तो आ गया शास्त्र बनाने का, तो आज ये शास्त्र खत्म भी कर दें और अगर उनके मन में नॉलेज रहे, कल फिर उनका द्वेष हो जाए, घृणा पैदा हो जाए, फिर बना लेंगे, वो तो खत्म नहीं होंगे। तो अभी भी अगर वो खत्म कर रहे हैं, तो जब उनको ये डर खत्म होता है कि भाई शायद हमला नहीं करेंगे, या आओ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, आओ हम आपस में प्रेम करें, जब ये भाव पैदा होता है तभी खत्म करते हैं ना। तो इसका हम क्या नतीजे पर पहुंचे कि अगर संसार में हम चाहते हैं लड़ाई ना हो, तो लोगों में प्रेम हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, बदले की भावना ना हो, हिंसा की भावना ना हो, लोगों में सह अस्तित्व की भावना, मिलकर रहने की भावना हो। तो इसका नतीजा क्या निकला कि खरबों रुपया जो इतना खर्च होता है और इतने सारे आदमी लड़ाई में, जिसको हम सुरक्षा कहते हैं देश की, जो लग जाते हैं, उसकी बजाय अगर हम हर एक मनुष्य को ये शिक्षा दें कि भाई आपस में इंसान इंसान से क्यों लड़ते हो, पशु भी अपनी जाति वालों को नहीं मारते, तुम ऐसा काम निकृष्ट क्यों करते हो, इंसान को तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, बेस्ट ऑफ क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात कहा गया है, तो फिर इंसान होकर आप दरिंदों का या पशु पाशविकता का काम क्यों करते हो। अगर ये उनकी समझ में आ जाए तो फिर ये संसार सुखमय बन जाएगा। ये एक बात मैंने आपको बताई। इसी तरीके से गरीबी क्यों है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सोचता है मेरे पास धन हो, मेरे पास सैभ हो, मेरे पास साधन हो। अब वो जो किसी की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो भी उस प्रोडक्शन में हिस्सेदार हैं, उस उत्पादन में उनका भी हाथ है, रात दिन बेचारे वो जाके मेहनत वो भी करते हैं। अब जो पूंजीपति लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, समझते हैं हमारे बच्चे की शादी होगी तो उस पर तो हमें 10 लाख रुपया खर्च करना है। तुम 10 लाख रुपया खर्च करने की सोचते हो, उस बेचारे के पास 100 रुपए भी नहीं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा देके, फीस देके, किताबें लेके उनको कोई स्कूल में दाखिल करा सके। कम से कम चलो तुम अपना पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, उनकी भी कुछ सोचो, थोड़ा हिस्सा उनका भी उसमें होना चाहिए। तो जब मनुष्य को ये भावना नहीं होगी, जिसको शोषण हम कहते हैं अपने लालच के कारण से, तो आप कितनी भी संस्थाएं बना लीजिए जो गरीबी को मिटाने वाली हो, गरीबी तो मिटेगी नहीं, क्योंकि उसका कारण यह है कि मनुष्य का दूसरों के प्रति सद्भावना ना होने से, प्रेम ना होने से, संतोष ना होने से, ये जो गुण है, फिर भी इन्हीं गुणों की बात है, प्रेम, सद्भावना, संतोष और साथ साथ जो भ्रातृत्व की भावना है कि ये भी हमारे भाई हैं, इनका भला हो, सहानुभूति, ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक वो गरीबी कैसे मिटेगी। तो बहनों और भाइयों, मैं सब समस्याओं का इस समय विश्लेषण करने के लिए नहीं ये चर्चा कर रहा, लेकिन संक्षेप में आपको ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं जो कार्य आज कर रही हैं समस्याओं को मिटाने का, उन समस्याओं के अगर हम कारण में जाएं, मैंने जैसे दो मुख्य समस्याएं आपके आगे ले ली, ऐसे ही आबादी बढ़ती जा रही है, चलो एक समस्या हम और ले लेते हैं, मकान बनाते हैं, काफी सारे मकान आप दिल्ली में जाएं, जो लोग वहां 1947 में आए और जो आज आप जाके देखें, दिल्ली इतनी एक्सपैंड हो गई है, हर एक शहर इतना एक्सपैंड हो गया है कि अगर कोई पुराना आदमी, 100 साल पुराना आदमी कोई कब्र में से फिर उठ के खड़ा हो दिल्ली में आ जाए, वो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, वो कहेगा ये दिल्ली नहीं है भाई, मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं, ये दिल्ली नहीं है। तो इतने व्हीकल्स हैं, सड़क पार करना मुश्किल है, लोग कितनी कितनी देर खड़े रहते, एक के बाद दूसरी व्हीकल, तीसरी व्हीकल, चौथी व्हीकल, सरकार ने पुलें बनाई हैं, ब्रिजेस, ओवरहेड ब्रिजेस बनाई हैं, कोई अंत नहीं, बसें भरी हुई हैं, सैकड़ों बसें की हैं, तो भी लोग ऐसा लगता है कि किसी और फैक्ट्री में तो लॉकआउट भी हो गया होगा, स्ट्राइक भी होगी होगी, लेकिन जो मनुष्य के जन्म की कारखाना है वो चल ही रहा है निरंतर, ऐसे लगता है कि पता नहीं किस फैक्ट्री में मनुष्य बन रहे हैं, इतनी मोटरें नहीं आई, इतने मोटरसाइकिल नहीं है जितने मनुष्य आते जा रहे हैं। जिस इलाके में चले जाओ आपको ऐसा भीड़ भड़क्का लगेगा कि पता नहीं कहां से इंसान बनते हुए आ रहे। सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है संसार में इस समय इस फैक्ट्री का हो रहा है। मैं आपको सही बात बताऊं, इट इज वर्किंग डे एंड नाइट आई टेल यू। कल की खबर थी, आपको आश्चर्य होगा, कल की खबर न्यूज़पेपर में थी कि इंग्लैंड में आउट ऑफ एवरी फोर वन इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, चार बच्चों में से एक अवैध बच्चा पैदा होता है। आप बताइए, शादी से बाहर एक बच्चा पैदा होता है चार में से, 25% आप हिसाब लगाइए। ये मनुष्य की मनोवृत्ति हो चुकी है। तो आप विचार करें कि जब देश की आबादी इतनी बढ़ती जाएगी, फटाफट पैदा होते जाएंगे इंसान, और इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वो और करेंगे, इस पर अगर कोई प्रतिबंध नहीं तो नतीजा उसका क्या होगा। आप इतने स्कूल खोल नहीं सकते, इतने अस्पताल बना नहीं सकते, इतने घर दे नहीं सकते, इतनी एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते, और वातावरण भी प्रदूषित होगा। और अगर आपने हर एक ने अपनी कार लेनी शुरू कर दी, आखिर में वो कार वाला कहेगा भाई इस कार को छोड़ के पैदल ही चलना ठीक है, एक घंटे से ये ट्रैफिक जाम में कार खड़ी हुई है, अब तक तो मैं पैदल ही पहुंच जाता, ये कार नहीं, कार का नाम बेकार होना शुरू हो जाएगा। उस कार को लोग कार नहीं कहेंगे, कहेंगे बेकार है। अब ये तो ये सोचने की बात है कि अब ये समस्या कैसे समाप्त होगी। मनुष्य की ये जो काम वासना है, भोग वासना है, जिसका कोई अंत नहीं, उसकी प्यास बढ़ती है। आपने महाभारत में कथा पढ़ी होगी कि किस प्रकार से उसने 100 साल तक जिया, भोग भोगा, और फिर बेटे को कहता है कि मुझे अपनी जवानी दे दे, मेरे से बुढ़ापा ले ले, राज तू ले ले। ऐसी ऐसी कहानियां मिलती हैं। और वो भोग भोगने के बाद उसने क्या समझा कि ये भोगों का कोई अंत नहीं, ये ऐसे अग्नि के समान है जिस पर घी डालो तो भड़केगा, कम नहीं होगा। कभी भी हमने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इन भोग भोगने से तृप्त हुआ हो। कई लोग हैं खूब अचार मुरब्बे खाते हैं, बहुत टेस्ट लगता है उनको। जिस दिन उनको अचार ना मिले, आम का, नींबू का, या किसी और चीज का, मिर्च मसाले का, तो कहते हैं आज खाना में मजा नहीं आया, आज पता नहीं खाना खाया हजम भी होगा कि नहीं। ऐसे लोगों को हमने देखा कि जब मर रहे हैं कहते हैं अचार तो थोड़ा सा खिला दो, बुजुर्गों को ये कहते हैं, अरे भाई तू मर रहा है, डॉक्टर कहता है इसको खाना भी मत खिलाओ, सिर्फ चाय पिलाओ, और तू कह रहा है कि अचार खिला दो। कहता है थोड़ा सा तो खिला दो, मैंने खुद सुना है, आई टेल यू ऑनेस्टली। उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, आम के अचार में लगा हुआ है। बताइए, ईश्वर की बात छोड़ दो, घर की बात छोड़ दो, कहता है थोड़ा सा आम का अचार तो खिला दो। आई वाज सरप्राइज कि ये आदमी डेथ बेड पर है, मरने जैसा है, और फिर कहता है कि मुझे आम का अचार तो खिला दो है? तो ये आदमी की तृष्णा नहीं समाप्त होती। अगर हम ये सोचें कि भोग भोगने से हम तृप्त हो जाएंगे, ऐसा कभी हमने कोई व्यक्ति देखा नहीं। तो अगर हम ये अपने जीवन में संयम नियम अपनाएं, तब ये समाज सुखी होगा। तो ये जो जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो काम से, चाहे क्रोध से, चाहे लोभ से, चाहे मोह से, चाहे अहंकार से, चाहे आलस से, आलसी लोग भी दुनिया में बहुत वो हैं, जो भाग्यवादिता के करके हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं। वो एक मिसाल हमारे बुजुर्ग हमेशा दिया करते थे, फारसी में एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ था, एक जो बेर की वो होती है ना क्यारी, उसके नीचे बेर गिर के उसकी छाती पर पड़ा, और एक ऊंट पर आदमी जा रहा था, उसको कहता है अरे ऊंट वाले, वो बेचारे ने समझा ये लेटा पड़ा है, कोई तकलीफ में है, चलो ऊंट को पहले, ऊंट से आदमी जंप तो लगा नहीं सकता, अपनी भी हड्डी पसली तोड़ेगा, पहले ऊंट को खुद बिठाया जाता है, वो किस करवट बैठता है उसको देख के उधर से उतरा जाता है। तो बेचारे ने ऊंट को लगाम लगाई, उसको बिठाया, बिठा के उतरा, उधर के आया, कहता है बोलो क्या सेवा है, कहता है ये बेर तो मेरे मुंह में डाल दो। उसने कहा भाई तेरे जैसे भी जो है ना, वो एक बनी है ना बुक जिसमें आता है ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट स्पीड के, वो आते हैं ना, क्या कौन सी बुक उसका नाम है जिसमें इस तरह की बातें आती है। तो मैं समझता हूँ ऐसा आलसी मनुष्य तो कोई नहीं संसार में होता होगा, लेकिन हर एक मनुष्य में किसी ना किसी प्रकार का आलस जरूर होता है। हम आपको बताएं, अपने जीवन में अगर हम टटोले तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति जो है वो इस तरह से सुस्त महादेव, सुस्त महादेवी बन जाता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो 6 विकार हैं, जो योगी जीवन के लिए कहा गया है कि इनसे हमने हटना है, ये जो गीत बज रहा था शुरू शुरू में कि जो व्यक्ति निर्विकार है, पवित्र जिसका जीवन है, वो व्यक्ति महान है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से आप पूछ के देखें, कभी आप खड़े हो जाएं रस्ते पर, कोई आदमी जाए उसको को एक मिनट बात तो सुने, उस तरह की बात नहीं जो उसने बेर वाले ने बुलाया था, वैसे आप उसको एक मिनट बुलाएं, उसको कहें, अगर आप सर्वे करके देखें, विदेशों में इस प्रकार के सर्वे बहुत होते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, मेरे ख्याल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर बन गया वो भी संतुष्ट नहीं, जो प्रेसिडेंट बन गया वो भी संतुष्ट नहीं, जो महामंडलेश्वर बन गया वो भी संतुष्ट नहीं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई इच्छा उसको कचोट रही है, वो अगर पूरी नहीं होती तो सपने में भी उसी के ही दर्शन करता है। ये हमने देखा है कि हर एक मनुष्य के जीवन में ये हालत है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इन संयमों नियमों को अपनाता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, एक वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आत्मा उसको सच्ची गवाह दे कि तू ठीक आदमी। उसको संतोष होगा कि आज अगर मेरा शरीर छूट जाए, मैं इस संसार से चला जाऊं, जबकि मालूम है किसी को कि भाई कहते हैं डेथ कीप्स नो कैलेंडर। कैलेंडर में आप बता सकते हैं जन्माष्टमी कब है, रक्षाबंधन कब है, दिवाली कब है, मेरी मृत्यु कब है, उसमें कोई लाल इंक में छपा हुआ है किसी का कुछ पता? कुछ मालूम नहीं। इसलिए कहते हैं आया परवाना और हुआ रवाना। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम बिजी, आई कांट कम, आई विल कम आफ्टर 10 डेज। आया और आदमी गया। ये दुनिया का हिसाब है। जब ऐसी बात है तो हम जब अपने मन में झांक के देखें कि हमारा जीवन जो है संसार को भी सुख बनाने में और स्वयं को भी सुखमय बनाने में, क्योंकि संसार भी सुखमय तभी होगा, समस्याओं से रहे तभी होगा, दुखों और अशांति से मुक्त तभी होगा जब व्यक्ति होगा, क्योंकि व्यक्ति समाज की इकाई है। आप जब ये माताएं बैठी हैं, जब चावल बनाते हैं तो चावल ये गले हैं कि नहीं गले? एक एक चावल हर एक को अलग अलग थोड़ी देखती हैं। एक छोटे से चिमचे में भी चार चावल निकाल के एक चावल को भी दबा के देख लें कि ये गला है कि नहीं गला, कहते हैं हाँ जी सारे गल गए। कोई छोटा पूछा माता जी आपको ये कैसे मालूम है सारे चावल गल गए, आपने देखे तो है नहीं। लेकिन अगर वो एक सैंपल जो देख लिया तो उसे लग गया कि सब गल गए। आज सब दुखी हैं, किसी एक व्यक्ति से भी पूछिए तो वो भी दुखी है, और क्योंकि सब दुखी हैं इसलिए सारा संसार दुखी है, क्योंकि सारा संसार ही ऐसा है। जितना जितना कोई एक व्यक्ति सुखी बनने लगेगा वो संसार को सुखमय बनाने की तरफ बढ़ेगा, और उसके संपर्क में जो आएंगे वो सुखमय बनने का संदेश, उसकी प्रेरणा, उसके लिए उनकी एग्जाम्पल सबूत, उसका एक सैंपल उनके सामने हो जाएगा, और फिर ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है ये आगे चलेगा। तो सबसे बड़ी सेवा क्या हुई? सबसे बड़ी सेवा हुई, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले मैं जब पवित्र बनूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित होकर अपने जीवन को शुद्ध पवित्र निर्मल बनाऊं, और फिर दूसरों को उसकी प्रेरणा दूं, क्योंकि जैसा कोई व्यक्ति होगा उसके भाई बांधव, उसके घर के दूसरे सदस्य उसको देख के वो भी वही कॉपी करेंगे, जैसे माता पिता होंगे उसको देख के बच्चे भी वही उसी तरीके से बनेंगे। तो बीइंग पेरेंट्स, बुजुर्ग होने के नाते, घर गृहस्थ वाले होने के नाते, तो आपकी जो जिम्मेवारी है वो मैनिफोल्ड है और भी बढ़ जाती है कि आपको देखकर आपके बच्चे आपसे छोटे जो हैं वो भी आपसे सीखेंगे ये कैसा कार्य करते हैं। तो ये जब जिम्मेवारी हमारी हो गई तो अपनी जिम्मेवारी तो हो ही गई, और जो हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिलेटिव सर्कल, हमारा पारिवारिक सर्कल जो है उसकी जिम्मेवारी भी अगर हमारे ऊपर हो गई, तो जैसे हमने ये देख लिया कि सब समस्याओं का समाधान, सब समस्याओं का मूल करने का उपाय वो यही है कि हम निर्विकार बने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ें, संयम नियम का पालन करें, जीवन में पवित्र बने, महान बने, तो ये न केवल अपना सुखमय जीवन होगा बल्कि संसार की सबसे अच्छी सेवा इसी से होगी। ये एक इस आज की चर्चा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता था, लेकिन वो भी तभी होगा, ये सोचने की बात यह है, जो एक बहुत आवश्यक कड़ी है इसके साथ, नेक्स्ट स्टेप उसका वो होगा कैसे, चाहते हुए भी होगा कैसे? जब हम योग अभ्यास करेंगे। ये विकार ऐसे किसी का पीछा नहीं छोड़ते, ये हमारे मन में पूरी तरह से घर कर चुके हैं, हमें इन्होंने अपनी कैद में पूरी तरह से बांधा हुआ है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ऐसी मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ है कि चाहते हुए भी हम उसको छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं ना, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति किसी के साथ गया था नदी में स्नान करने, डुबकी लगाई तो दोनों ने, एक तो आ गया किनारे पर थोड़ा नहा के, दूसरा नहीं आ रहा था। अरे उसने कहा भी आओ चलें वापस, तो वो एक काला काला सा वो कुछ था उसके पास चीज, तो उसने कहा भाई ये छोड़ कंबल अब तू वापस आ। तो बोलता है वो कंबल नहीं था, वो कोई जानवर था जिसने उसको पकड़ रखा था। तो कहता है ये कंबल वो नहीं है भाई, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। उसने उसका पांव पकड़ रखा था, चाहे वो मगरमच्छ था या कोई बड़ी फिश थी या व्हाटएवर कोई पानी में रहने वाला जीव था जिसने उसको पकड़ रखा था। तो वो ये बोलता है ऐसे ही हमारी जो दशा है, हमारी जो हालत है, वो इस प्रकार से। तो उसके लिए जो ये योग अभ्यास है, उस परमात्मा की जो स्मृति है, याद जो है, ये याद ही एक ऐसा तरीका है। लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे विषय विकार मिटाओ, लेकिन वो मिटाने का जो तरीका है, साधन, उसका अभ्यास नहीं करते। अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते कि हम जब अपना योग, उस मन का योग, मन को जो पवित्र करना है, वो जब हम परमात्मा से नाता जोड़ेंगे, हमारा कनेक्शन जुटेगा, उससे हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, हमारा मन निर्मल होगा और वो परमात्मा से हमको पवित्रता मिलेगी। परमात्मा हमें देना चाहता है, जैसे माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा बने, वो भी चाहता है हम अच्छे बने, लेकिन वो अच्छाई आए कैसे हमें? अच्छाई सूक्ष्म चीज है। जो हमारे में अच्छे विचार हैं, वो अच्छे विचार आएंगे कैसे? किसी के मन में विचार पहुंचेंगे कैसे उसके? जब उसका मनोयोग होगा, उसका बुद्धि, उससे प्रेम, उसका स्नेह का संबंध उससे जुटा हुआ होगा। इसलिए आपको जो योग अभ्यास की बात कही जा रही है कि पवित्र बनो और योगी बनो। केवल पवित्र बनो यहां नहीं कहा जाता, पवित्र बनो और योगी बनो, ये संसार का ऐसा नारा है जो किसी ने दिया नहीं। अलग अलग नारे दिए हैं हर एक ने, लेकिन ये नारा जो बाबा ने यहां पर दिया है कि सब समस्याओं को अगर समाप्त करना चाहते हो, संसार को सुख शांतिमय बनाना चाहते हो, तो ये इसका उपाय है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी तो जो चर्चिल था वहां का प्राइम मिनिस्टर, वो हमेशा ये साइन शो करता था, वी फॉर विक्ट्री, कहता था विजय हमारी होगी, ये हिटलर जो है ये परास्त होगा और आखिर हमारी विजय होगी, ये साइन आप हमेशा याद रखो। तो ये जो दुख और अशांति है, ये जो विकार है, इस पर विक्ट्री का जो सिंबल है, हमको भी शिव बाबा परमपिता परमात्मा कहते हैं कि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप विजय रत्न है, विजय वत्स है, विजय आपकी हुई पड़ी है, ज्ञानी की विजय हुई पड़ी है। सारी गीता आप पढ़ें, गीता के अंत में लास्ट श्लोक क्या है, संजय क्या कहता है लास्ट में, कि जिधर भगवान स्वयं है और जिधर धनुर्धर अर्जुन है, ये भी साथ का है, दो बातें, जिधर धनुर्धर अर्जुन है, अर्जुन जैसा धनुर्धर है, और जिधर भगवान स्वयं है उधर श्री और विजय, दो चीजें उसने कही है, उधर ही श्री और विजय है। तो धनुर्धर का क्या मतलब है कि जो धनुष में क्या करना पड़ता है, धनुष बाण में बाण को एक निशाने पर जुटाया जाता है ना, तो ये एक अभ्यास की चीज है और ये कंसेंट्रेशन को शो करती है कि इधर उधर मन ना जाए, एक जो बिंदु है वहां पर मन टिका हुआ हो। तो जो अपने लक्ष्य, उसको भी लक्ष्य कहते हैं, एम, जो गोली जहां मारी जाती है उसको एम कहते हैं, ये भी एम एंड ऑब्जेक्ट होता है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। तो वो परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, हमारे मन का संकल्प वो उधर ही उस परमात्मा की ओर जाए। उपनिषदों में इस प्रकार के संस्कृत में वाक्य हैं कि तू बुद्धि को धनुष बनाकर विचार रूपी वाण उस परमात्मा की ओर छोड़, इस प्रकार की भाषा भी प्रयोग की गई है। तो वो जो हमारा मन का जो लगन है, जो परमात्मा की ओर हमारा अटेंशन इतना फोकस्ड हो कि जैसे कोई व्यक्ति तीर चलाते वक्त बिल्कुल और इधर उधर ना देखकर, चाहे उस वक्त वो शायद वाली मक्खी भी उसकी गर्दन को काटने आ जाए, लेकिन उस वक्त उसका ख्याल ना करके वो पूरा उस तरफ देखता है, ऐसे ही कुछ भी हो, एक स्थिर होकर उस लगन में मगन हम हो जाएं, मन को स्थित कर दें, इस कारण से वो कहा गया। और वैसे ये आप देखें, ये भी धनुष की तरह से मनुष्य का ये जो मुख है, आप इसकी शक्ल देखें बिल्कुल जैसे धनुष की तरह से, और कोई तो इसमें से वाण निकाल रहा है, ऐसा शब्द बोलता है जो दूसरे को जाके वाण की तरह से लगे, कोई वाणी बोल रहा है, वाणी बोलते हैं या वाण निकालते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मधुर वाणी है, है या हम ऐसे तीर मारते हैं जो दूसरों को जाके उनके मन को छेद दें, ये डिपेंड करता है। तो वो कहा गया है कि जहां अर्जुन जैसा धनुषधर हो, धनुषधर का मतलब यह है, ये प्रतीक है एक पुरुषार्थ का, उद्यम का, अभ्यास का, मन की एकाग्रता का, उन सबको इकट्ठा करके आर्टिस्ट को कहो कि एक चित्र बनाओ कि एकाग्रता करनी है, तो जैसे वो क्या दिखाते हैं, अर्जुन जब द्रौपदी को वर्ण करने गया था कि ऊपर मछली घूम रही थी, खड़ी हुई नहीं थी मछली भी, मछली की आंख बड़ी चंचल होती है, आप देखेंगे मछली की आंख स्थिर नहीं होती, और सबसे ज्यादा चंचल आंख मछली की होती है सब पक्षियों प्राणियों में से, कोई भी प्राणी आप देख लें, कबूतर, कवा, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, सब किसी की भी आंख देख लें, वो आपको ऐसे करके देखेगा, आंख उसकी स्थिर रहेगी। कबूतर की तरफ आप जाके देखें और किसी पशु पक्षी की ओर, उनकी आंखें ऐसी नहीं होती, मछली की जो है वो फड़कती रहेंगी। और एक तो आंख उसकी फड़कती हुई, दूसरा मछली घूमती हुई, फिर मछली ऊपर, ऊपर भी देखना नहीं, देखना भी नीचे, वो क्या दिखाते हैं, तेल की एक कड़ाई रखी हुई है। तो ऐसा निशाना जुटाना, और हाथ भी हिले नहीं बिल्कुल। हर एक के हाथ में ब्लड सर्कुलेशन से थोड़ा बहुत हाथ तो नेचुरली हिलता है हर एक व्यक्ति का। आप अगर ये इस तरह से रख लें, माप लें, एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, और आपके पास कोई ऐसा साधन हो, आप देखें, देखने में आपको लगेगा कि ये हिल नहीं रहा, लेकिन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मूविंग। ये संसार ही गतिशील है, इसका नाम संसार है, इसका नाम जगत है। जगत शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी गति हो। जब ये सारी पृथ्वी हिल रही है तो उसमें बैठे हुए हम नहीं हिल रहे क्या? हम भी हिल रहे हैं, हमारा हाथ भी हिल रहा है। फिर भी एक कंप्यूटर की तरह से उसका अंदाजा लगा के कि ये मछली किस टाइम कहाँ होगी, और इसकी उसमें से भी आंख कहाँ होगी, और आंख की भी पुतली में जाके इसके लगे उसके बीच में, ये एक कंसेंट्रेशन की बात। तो वो ये दिखाया गया कि जिसका लक्ष्य एक दफा धुन सवार हो गई कि मैं तो परमात्मा का हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्योति बिंदु हूं, और मेरे जीवन का लक्ष्य तो पवित्र बनना और योगी बनना है, बस ये उसका लक्ष्य, यहां पर उसने अपना पुरुषार्थ का तीर जुटाना है। ये है अर्जुन जो उसको करके दिखाएगा, वो सब पुरुषार्थियों में से पांडवों में से श्रेष्ठ। और फिर जहां भगवान स्वयं है, सिर्फ अर्जुन है नहीं, और वो द्रौपदी, द्रौपदी शब्द का अर्थ क्या है? ये सब के अर्थ हैं। ध्रुव, ध्रुव माना जो ध्रुव है, और पद माना जो स्टेटस, यानी स्थायी सुख शांति जो प्राप्त करना है, उसको जो वरण करना है, जिसने जो विवाह करना है, वरण करना है। वरण के दो मतलब होते हैं, विवाह को भी वरण कहते हैं, और आप किसी चीज को अपनाते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको भी वरण कहते हैं। शब्दकोश में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो वो एक लेखक ने उसको क्या दिखाया कि जब मन की एकाग्रता आपकी चंचलता को समाप्त करने की होगी, और चंचलता मक्खी, वो मैंने बताया मछली की आंख बहुत चंचल है, मछली खुद भी फड़फड़ाती है जब पानी के बाहर आ जाती है, कहते हैं भाई जल बिन मीन जैसे, और फिर मीन के भी जो नैन है वो बहुत, मन की जो, मन भी कहते हैं चंचल है, उस चंचल मन को ज्ञान रूपी वाण से लक्ष्य करके एकाग्र करना, ऐसा जो पुरुषार्थ करने वाला है। क्योंकि गीता योग शास्त्र है, आप गीता के हर एक अध्याय में अंत में पढ़ेंगे अथ गीतासु उपनिषदसु योग शास्त्रे प्रथम अध्याय समाप्ता, हर एक अध्याय के अंत में यही आएगा कि गीता ये उपनिषद है, ये योग शास्त्र है, प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। फिर दूसरे में आएगा गीतासु उपनिषदसु योग शास्त्रे, फिर वो आएगा द्वितीय अध्याय समाप्ता, इस प्रकार से वो योग शास्त्र है। उसमें कोई ये धनुष बाण की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक धनुष बाण की बात है। और उसके बाद वो कहता है कि जिधर भगवान स्वयं होंगे उधर विजय होगी। किस पर विजय? ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, इस पर अगर विजय आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि आप उस मन पर प्रभु को एकाग्र करें, इसको कहा जाता है योग, और चंचलता को समाप्त करके, उसको हिट करके अपने ज्ञान रूपी वाण से अपना द्रुपद जो श्रेष्ठ पद है नरसे नारायण बनने का, उसको आप वरण करें, उसको आप प्राप्त करें। इसका नाम है द्रुपदी। पांचों ने उसको प्राप्त करने की पांडवों ने कोशिश की, पांचों ने वरण किया, लोगों ने लिख दिया कि उस स्त्री से पांच लोगों ने शादी की। ऐसी बात कैसे हो सकती है? आप सोचिए कि एक नारी भारत की और उसके पांच पति हों, जबकि एक दार नियम हमारा रहा है। लेकिन पांडव जो पांच थे, मन थोड़ी संख्या में थे, उन पांचों ने ये लक्ष्य अपनाया कि हमने ध्रुव पद प्राप्त करना है। अब ध्रुव पद को उसने प्राप्त करना है, वरण करना है लिख दिया, और वरण करना है को उसने वो द्रौपदी बना दिया। नाटक करना है, कोई खेल खेलना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, पात्र बनाना पड़ेगा, और लोगों ने दूसरी बात करनी शुरू कर दी। तो वो जो हमने प्राप्त करना है, उसके लिए जो भगवान स्वयं हमारे साथ हैं, कार्य करते वक्त हम ये सोचें कि भगवान हमारे साथ हैं, उनका हाथ हमारे ऊपर है, उनको मन से हम भूले नहीं, उसकी स्मृति में जब हम रहें, तो ईश्वर अगर हमारे साथ है तो उसके लिए कहा गया है कि जहां धनुर्धर अर्जुन है, जहां भगवान स्वयं साथ हैं, वहां श्री और विजय है। ये विकारों पर विजय है, और मनुष्य को श्रेष्ठ प्राप्ति है, मनुष्य श्री पद को, श्री का मतलब है देवता, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, मनुष्य ये श्री पद प्राप्त करता है, नर से नारायण बनता है। तो संक्षेप में भाव ये है कि ये जो योग शिविर आप कर रहे हैं, उसका लक्ष्य यही है कि आप योग को अभ्यास करते हुए मन को उस में एकाग्र करते हुए इस चीज को प्राप्त करें। यहां तक कह के समाप्त करूंगा। ओम शांति। अब आप में से किसी को कोई इसके विषय में प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते। जी, मराठी में मैं समझ नहीं पाऊंगा, जो मराठी वाले होंगे वही समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत शायद समझ भी लूं, कोशिश करूंगा, जानता नहीं।
परंतु जो कर्म आहे मग कर्म न करता ही आपण शांती करायचं का जे काय नंतर रांगले किंवा वैष्णव ज्यांना तो ट्रेनिंग करेल हे जे आहे तर यामध्ये कर्म ही करायचं की नाही म्हणजे थोडी शंका अशी उत्पन्न होते की आपण सांगितले की समाजामध्ये परस्पर हे आहे पुष्कळ म्हणजे गरीब आहे आंधळे आहे चांगले पुष्कळ दरिद्री आहे परंतु त्या दृष्टीनं थोडं थोडं सामाजिक कार्यकर्ते त्यांना जसं जमतं तसं ते करतात अर्थात हे कळलं की तेव्हा रागू नको शांतपणाने फिरलं पाहिजे हे मला कळलंय परंतु मला काय म्हणते की काम करायचं किंवा नाही मग त्या नुसतं ध्यान करायचं होता
भाई कोई इसमें थोड़ा मुझे स्पष्ट कर देंगे तो अच्छा होगा ताकि मुझ में गलत फहमी न रहो जो कोई मराठी जानने वाले हों थोड़ा हिंदी में मुझे फिर से बता दें सब सब भी सुन लेंगे कोई तो जानते होंगे हिंदी
मुझे ऐसा चाहिए कि लेकिन शांति में बहुत अच्छा है लेकिन जो क्या रंगले मांगले त्याची म्हणे तो आपले वैष्णव जन तो ते नाही कहिए
फिर पढ़ाई जाने रे
ऐसा जो है वो कई लोग करते है कई लोग ऐसा काम करते है अच्छा आप बोलते हैं कि शांति से होना चाहिएगा नहीं चाहिए द्वेष नहीं चाहिए कोई समझ गया लेकिन वो करते करते वो समाज कार्य करना ही या नहीं आप बोलते हैं कि दरिद्र है दुखी है अंधेरे है पांगे है ऐसे लोग बहुत है तो अभी भी चलता है लेकिन कहीं लोग समाज कार्य जो है वो करते ही रहते हैं
वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ठीक बात है मैं समझ गया
ऐसा ऐसा मैंने भेज दिया है कि ध्यान करना अच्छा लेकिन कर्म ध्यान करते करते कर्म चाहिए नहीं क्योंकि मैं आपके सेंटर जहाँ है वहाँ मैं गई थी तो ऐसा कर्म नहीं वहाँ बनते
समझ गया आप
नादार स्थिति है तो उनके बोलना चाहिए वो अच्छा नहीं है ऐसा नहीं जो कॉलेज के
विद्यार्थी हैं उनके में अनुशासन होना चाहिए
ऐसा हुआ है करना या नहीं ध्यान आप समझा मुझे अच्छा
मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो समझा
ना जी ध्यान अच्छा है नंबर वन ध्यान है ओपन करना ही है नहीं
हाँ ठीक बात ऐसा है ठीक है ठीक सभी लोग मेरे ख्याल में प्रश्न तो हर एक के सामने क्लियर हो गया तो आप सब से भी किसी को कोई विचार होगा तो आप सुनेंगे लेकिन मेरा निवेदन इस विषय में ये है कि अब कोई बीमार है उस समय उसको पीड़ा हो रही है दुख हो रहा है योग तो अभी उसने सीखा नहीं तो उस समय क्या करना पड़ेगा उसको अस्पताल में ले जाके या डॉक्टर के पास ले जाके इलाज करना पड़ेगा ना तो अगर किसी ने अस्पताल खोलने की सेवा की है वो भी अच्छी सेवा की है ना अगर वो ना खुला होता अस्पताल तो इस व्यक्ति को इलाज कहां से मिलता तो किया तो ठीक है कि कोई गरीब व्यक्ति है उसको संसार में कष्ट हो रहा है और किसी ने ऐसी संस्था बना रखी है कि उसको कोई चीज उसने जिस वक्त उसकी जरूरत है उसको दे दिला दी तो ये भी अच्छा ही काम किया ना जब तक संसार से गरीबी मिट जाए तब तक जो गरीब है उसकी तो आवश्यकता पूरी होनी चाहिए नहीं तो अगर उसको दवाई के लिए पैसे नहीं रहे तो वो तो उसके घर वाला कोई जिसका वो इलाज करना चाहता है वो तो मर जाएगा तो उस वक्त के लिए तो वो काम जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है ना लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ये समस्याएं हमेशा के लिए अंत कैसे हो ऐसा कैसे हो कि भाई गरीबी ही ना रहे कि भाई हम दान भी करते रहें और गरीब भी बढ़ते रहें ऐसा उपाय भी हमें साथ साथ करना चाहिए एक होता है लॉन्ग टर्म एक होता है शॉर्ट टर्म एक होता है कि किसी समस्या को समाधान करने के लिए अब हर दफा फ्लड आते हैं किसी नदी में फ्लड आते हैं अब आगे फ्लड कईयों की कुटिया डूब गई और उनके घर का सामान भी बह गया तो उस वक्त तो उनको कपड़ा देना पड़ेगा उनको भोजन देना पड़ेगा ये करना पड़ेगा ना और लेकिन आगे के लिए फ्लड रोज रोज आता है इन बेचारों को कोई ऐसा स्थान हम दे दें जो हर साल फ्लड में आए और इनकी कुटिया डूब जाए ये रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्लान बना के एक स्थायी भी एक योजना बनानी पड़ेगी ना ताकि इस समस्या को समाप्त कर दिया जाए हमेशा के लिए तो मेरा भाव ये था कि जो लोग कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं पीर पढ़ाई जान के, जो ये कह रहे हैं भाई वैष्णव नर ते नर जानिए, जो पीर पढ़ाई जाने रहे, तो वो जो भाई वैष्णव का लक्षण ये है कि जो दूसरे को दिख को समझ के उसको कोई हेल्प करे। वो कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबिया, मनुष्य दूसरे के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे, सहानुभूति करे। दैट इज ऑल राइट, वो तो ठीक है, बट दैट इज ओनली ए टेम्पोररी सोल्यूशन, वो एक अल्प समय के लिए एक हल है, लेकिन वो कोई स्थायी हल नहीं। समस्या को निर्मूल करने के लिए, संसार को हमेशा के लिए एक नए समाज के निर्माण के लिए, सुख शांति के लिए नहीं है। उसके लिए मैंने बताया कि मूल उसके ये छह विकार हैं। उन छह विकारों को दूर करने के लिए मनुष्य को जब ज्ञान मिले और वो ईश्वरी स्मृति में रहे, तब ये निर्मूल हों। तो वो अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे और केवल वही सेवा करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं, तो वो भले हम अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन उससे वो समस्या को निर्मूल नहीं कर रहे। वो करो भले, लेकिन साथ साथ ये करो। ये हमारे कहने का भाव था। क्लियर हुआ सबको ये? और किसी का कोई प्रश्न? जैसे हम आपको मिसाल दें, एक सेंटर पर एक कोई मिल का मजदूर गया और वो जब पहली दफा वहां गया तो उसके जो कपड़े थे वो बहुत मैले कुचैले खराब कपड़े थे, और जब वो वहां जाके केंद्र पर बैठा तो लगा कि भाई एक लोगों ने जो देखा उसको खुद भी ख्याल आया कि ये तो स्वच्छ निर्मल जगह है, मेरे कपड़े तो बहुत खराब जैसे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इस किस्म का कोई भेद होता नहीं, कोई कैसा भी व्यक्ति हो आता है उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स ही जाते हैं, वो व्यक्ति कोई अशांति को दुख को लेकर आया है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसको हम अटेंड करें, देखें वो क्या कहता है। तो आके बैठा, वो व्यक्ति शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था, जुआ भी खेलता था, कई किस्म के व्यसनों में भी वो मुबतला था। जैसे ये कहते थे कि भाई नशे नशा करता है तो वो नशा भी करता था, इस प्रकार का व्यक्ति था। जब उसको शिक्षा दी गई ये कि तुम कौन हो, तुम तो परमात्मा की संतान हो, परमात्मा तो परम पवित्र है, तुम उसके बच्चे हो, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये मनुष्य जीवन तो अनमोल है, इत्यादि इत्यादि, आप इनके गुलाम कैसे हो गए, ये 2.5 इंच की बीड़ी और 6 फुट के तुम, इस 2.5 इंच की बीड़ी ने तुम 6 फुट के आदमी पर कैसे कंट्रोल कर लिया। उसको जब ये सारी बातें समझाई गई तो उसके मन में ये आया कि मुझे अच्छा बनना चाहिए। अब तक जो लोग बात करते थे उससे, कोई कहता था फिल्म कौन सी चल रही है, कोई कहता था तुम बीड़ी किस मार्के की पीते हो, किस कंपनी की, और कोई कहता था आज जुए में कितना दाव लगाओगे, यही बातें उससे करते थे। उसका सोबत खराब थी, संग खराब था, तो बुरा होता जा रहा था। अब यहाँ पर आया, बहनों ने बड़े स्नेह से उसको रिगार्ड देकर, कहीं भी उसको कोई व्यक्ति इतना आदर तो देता नहीं था, भाई जी आओ बैठो, आपकी क्या सेवा करें, पानी पियोगे, प्यास तो नहीं लगी। उसके साथ तो ऐसा ट्रीटमेंट किया गया जैसे किसी पार्लियामेंट के मेंबर के साथ या किसी विशेष व्यक्ति के साथ किया जाता है, जिसके वो योगी भी अपने आप को मन में नहीं समझ रहा था, संकोच कर रहा था। उसको लगा यहाँ तो बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तो बहुत स्नेह देते हैं, इतना आदर भाव देते हैं, अपने मन में उसको अपना संकोच आने लगा, मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जितना मुझे यहाँ आदर दिया गया है। और इतनी अच्छी बातें जब उसको बताई तो उसके मन में आया कि मुझे तो ये ठीक बात कह रहे हैं, मेरे मन मुझे बदलना चाहिए। उसको प्रेरणा मिली, उसका विल स्ट्रांग हुआ, उसका मनोबल दृढ़ हुआ, और उसने ये निर्णय किया कि मैं ऐसा पैसा खराब कर रहा हूं, जीवन भी खराब कर रहा हूं, ये सफेद कपड़े पहने हुए हैं, मेरे कपड़े कैसे हैं। वो अपने आप कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके मन में एक अच्छा विचार चला तो चलता ही गया। और एक हफ्ते का जो कोर्स उसने लिया, उसके कपड़े का डेली रंग बदलता गया, मैले से अधिक अधिक साफ होता गया, और हफ्ते के बाद अगर आप देखते तो उसको पहचान नहीं सकते। और आज कभी आप दिल्ली में आए तो हम उसको मिलाए, आप उस व्यक्ति से उसकी जीवन कहानी पूछें आप, वो व्यक्ति जैसे ही उसको महीने की तनख्वाह मिलती थी वो जुआ खेलता था, समझता था मेरी तनख्वाह से तो मैं आगे बढ़ नहीं सकूंगा, किसी दिन तो जुआ मेरी आ जाएगा, किस्मत मेरी जाग जाएगी, 10-20 हजार रुपया तो मिल ही जाएगा, उससे ये करूंगा वो करूंगा, कोई दुकान खोल लूंगा, ऐसे सोचता रहता था उधेड़बुन में, और हमेशा अपने पैसे जुए में गंवा आता था। जुआ खेलने में भी होशियार नहीं था, वो भी गंवाने का ही उसको साधन आता था, हार के आता था, उधर भी पैसा गंवा के आता था, बीड़ी सिगरेट पर खराब करता था, बचा कुचा शराब पर खराब करता था, घर वाले बेचारे के दुखी थे, पत्नी को कुछ पैसे ना दे ढंग के, बच्चों को कुछ खाना ना मिले, सारे बेचारे परेशान के, इसको कैसे किया जाए, इसकी सोबत खराब हो गई। अब जब वो बदला, अब उसके पास बैंक बैलेंस भी है, उसने कुछ और सीख के आगे उन्नति भी की, एम्प्लॉयमेंट भी, उसकी स्टेटस भी बढ़ा। अब वो उधार नहीं लेता, पहले तो काफी सारा कर्ज ले रखा था क्योंकि वो शराब पीता था और देखता था पैसे है नहीं, दुखी होता था, दुख को खत्म करने के लिए और शराब पीता था, और शराब के लिए और कर्ज लेता था, कर्ज लेके दुख होता था, चिंता लगती थी, फिर उसको खत्म करने के लिए और शराब पीता था, यही काम करता रहता था। और आज वो व्यक्ति कोई उसको देखे तो समझेगा ये भी एक सम्मानित व्यक्ति है। तो वो जो सेवा है, अब जो उसकी गरीबी जो थोड़ी कम हुई, जो आगे उसने जीवन में प्रोग्रेस किया, वो एक अच्छा नागरिक बना, वो इस शिक्षा से, उस परमात्मा की याद से, मनोबल से। ये हमारे कहने का भाव था कि इस प्रकार की जब शिक्षा की जाए तो एक नए समाज का निर्माण होगा। यहीं आप समाप्त करते हैं, ओम शांति। 3 मिनट याद में बैठ के फिर समाप्त।